संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 7 फरवरी 2020 के इस अंक में शामिल हैं। सीरिया के इदलिब में लड़ाई हुई घमासान, लाखों लोग विस्थापित। कोरोना वायरस की जड़ का पता लगाने में जुटे हैं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक। महिला खतना से उनके स्वास्थ्य को ही नहीं देश को भी होता है बड़ा आर्थिक नुकसान। दुनिया भर में लगभग 1 अरब छोटे हथियार प्रचलन में, ये देते हैं हिंसा को बढ़ावा। दुनिया भर में पागलपन की आंधी से तनाव हुआ बहुत गंभीर, कहना है महासचिव का। और वंचित समूहों के बारे में कैसे एकत्र हो आंकड़े जिनसे हो उनके हालात बेहतर। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर यूएन न्यूज रीडर ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए प्रमुख समाचार आपको आसानी से मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गियर पीटरसन ने कहा है कि सीरिया के पश्चिमोत्तरी इलाके इदलिब में हवाई और जमीनी हमलों में आई तेजी के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है और जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। गियर पीटरसन ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को ताजा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इन हालात से इंसानों को भारी तकलीफ हो रही है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे तुरंत रोकना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता मामलों के प्रमुख मार्क लोकॉक ने भी सीरिया में सैन्य गतिविधियों में आई तेजी से भीषण हुए हालात की जानकारी सुरक्षा परिषद के सामने रखी। उन्होंने इस स्थिति को मानवीय त्रासदी करार दिया। मार्क लोकॉक ने सीरिया के इदलिब इलाके में दिन ब दिन लगातार भीषण संकट का रूप लेती स्थिति का सामना करने वाले लोगों की मदद के लिए आपदा राहत कोष से $3 करोड़ की राशि जारी करने की घोषणा की है। मार्क लोकॉक ने कहा कि शहर दर शहर में हर तरफ लोगों और वाहनों की कतारें देखी गई हैं जहां लोग हवाई और ज़मीनी हमलों से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग वहां से बाहर निकल भी गए हैं उन्हें अभी सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला है। लाखों लोग स्कूलों, मस्जिदों और अधूरी पड़ी इमारतों में पनाह लेने को मजबूर हैं। बहुत से लोगों ने कीचड़ में ही अपने टेंट लगाए हैं जिन्हें तेज और सर्द हवा, बारिश और कड़ाके की सर्दी का सामना भी करना पड़ रहा है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गियर पीटरसन ने कहा कि लड़ाई बंद करने की संयुक्त राष्ट्र की अपील के बावजूद पिछले 2 महीनों के दौरान सैकड़ों आम लोग मारे जा चुके हैं, 5 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए हैं और आम लोग खुद को बेसहारा व निराशा के गर्त में धकेल दिए जा चुके समझने को मजबूर हैं। चीन के वुहान स्थान से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ा रखी है। इसकी गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दी है। विश्व वैज्ञानिक इस वायरस के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने की कोशिशों के साथ साथ इसकी रोकथाम और संभावित इलाज ढूंढने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इस वायरस से चीन में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और लगभग 31,000 लोगों के संक्रमित होने की खबरें हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
शुक्रवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन में नोवल कोरोना वायरस के 31,211 मामलों की पुष्टि हुई है और 637 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन से बाहर 24 अन्य देशों में इसके 270 मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहोनम गेब्रेयेसिस ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हर क्षेत्र में यूएन एजेंसी परीक्षण किट, मास्क, दस्ताने, गाउन और अन्य जरूरी सामग्री को भेजने में जुटी है, लेकिन इस समय दुनिया में बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की जबरदस्त किल्लत महसूस की जा रही है। इस कमी के कारण स्वास्थ्य कर्मियों व मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य दिनों की तुलना में ऐसे उपकरणों की मांग 100 गुना बढ़ गई है और कीमतों में 20% का इजाफा हुआ है। इससे पहले गुरुवार को यूएन एजेंसी के महानिदेशक ने बताया था कि कोरोना वायरस से निपटने के उपायों के तहत एक फोरम का आयोजन किया जाएगा।
To put it bluntly, we're shadow boxing. We need to bring this virus out into the light.
बिना लाग लपेट के कहूं तो हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हमें इस वायरस को रोशनी में लाना होगा ताकि इससे सही ढंग से निपटा जा सके। इसलिए हम 11 और 12 फरवरी को एक ग्लोबल रिसर्च एंड इनोवेशन फोरम बुला रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रिसर्च में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करके वैक्सीन और उपचार का इंतजाम हो सके।
यूएन एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियसिस के शब्द। नए कोरोना वायरस के बारे में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन ये वायरस उम्रदराज और उन लोगों के लिए बहुत घातक है जो पहले से ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी स्वास्थ्य दशाओं से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के पहले संक्रमण की पुष्टि 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में की गई थी। वैसे तो इस वायरस का जैविक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसके संक्रमण को रोकने के लिए अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है और ना ही अभी कोई इलाज प्रक्रिया मौजूद है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि महिला जननांग विकृति यानी महिला खतना न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य और अच्छे रहन सहन के लिए गंभीर खतरे पैदा करता है, बल्कि इसके कारण विशाल आर्थिक नुकसान भी होता है। इस दर्द भरी प्रथा के स्याह पक्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने के लिए हर वर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को इस दिवस के अवसर पर कुछ आंकड़ों का संदर्भ देते हुए कहा कि महिला खतना के कारण स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान का इलाज करने और अन्य गतिविधियों पर हर साल लगभग $1.40 अरब का खर्च आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और शोध विभाग के निदेशक डॉक्टर इयन एस्कियो का कहना है कि महिला खतना मानवाधिकारों का ऐसा गंभीर और दर्दनाक उल्लंघन है जो करोड़ों महिलाओं और लड़कियों को न केवल शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये देश के आर्थिक संसाधन भी बर्बाद करता है। ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में इस समय लगभग 20 करोड़ महिलाएं व लड़कियां हैं जिन्हें महिला खतना की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ध्यान दिला दें कि महिला खतना एक ऐसी प्रथा है जिसमें परंपरा या संस्कृति की दलील देकर लड़कियों के जननांग का कुछ हिस्सा काटकर उसमें बदलाव किया जाता है और ऐसा चिकित्सा कारणों की जरूरत के बिना होता है। महिला खतना की ये प्रक्रिया मुख्यतः 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ की जाती है। लड़कियों के स्वास्थ्य पर महिला खतना के तात्कालिक खतरनाक परिणाम भी देखने को मिले हैं, जिनमें संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव और मानसिक उत्पीड़न। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होते देखी गई हैं जिनका असर जीवन भर रहता है। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों की प्रमुख इजुमी नाकामित्सू ने कहा है कि दुनिया भर में साल 2010 से 2015 के बीच हिंसक कारणों से जितनी मौतें हुई उनमें से लगभग 50% मौतों के लिए छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नाकामित्सू ने बुधवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि दुनिया भर में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हिंसक कारणों से हो जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
दुनिया भर में इस समय 1 अरब से भी ज्यादा छोटे हथियार प्रचलन में हैं और इन हथियारों का प्रमुख इस्तेमाल गंभीर हिंसक गतिविधियों के लिए अमरीका से लेकर अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप तक प्रचलित है। अवैध छोटे व हल्के हथियार यूएन शांति रक्षा अभियानों व राजनीतिक मिशनों के लिए भी चुनौती पैदा करते हैं और संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के बुनियादी स्तंभों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बहुत बड़े दायरे के लिए छोटे व हल्के हथियारों का इस्तेमाल ही जिम्मेदार है। इनमें बच्चों की हत्याएं और उनका विकलांग बनना, बलात्कार और यौन व लिंग आधारित अन्य तरह की हिंसक गतिविधियां शामिल हैं। लोगों को विस्थापन व खाद्य असुरक्षा जैसी परिस्थितियों के लिए भी मजबूर करने में छोटे हथियारों की एक बड़ी भूमिका होती है। यूएन की निरस्त्रीकरण प्रमुख इजुमी नाकामित्सू ने बताया कि छोटे और हल्के हथियारों पर नियंत्रण करने के प्रयासों में मदद देने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक उपाय किए जा रहे हैं। खासतौर से सीमा पार से इन हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय प्रयास बहुत अहम है। अफ्रीका को संघर्ष मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी यूनियन की मदद कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के तहत अफ्रीका एमनेस्टी महीना जैसी पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत प्रस्ताव किया गया है कि अवैध रूप से इकट्ठा किए गए हथियारों के समर्पण, एकत्रीकरण और उन्हें नष्ट करने का काम किया जाएगा। ऐसी ही एक पहल सितंबर 2020 में होनी है।
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि पूरी दुनिया में बढ़ती अस्थिरता और अनपेक्षित भू राजनीतिक तनावों ने पागलपन की एक आंधी को जन्म दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में मंगलवार को पत्रकारों के लिए अपनी मुख्य वार्षिक प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। कुछ स्थानों पर हाल ही में बढ़े तनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि वैसे तो तनाव कम करने के प्रयासों में प्रगति नजर आ रही है, मगर स्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है। महासचिव ने कहा,
I've spoken recently about winds of hope, but today
मैंने हाल ही में आशाओं की हवाओं की बात की थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में पागलपन की आंधी चल रही है। लीबिया से यमन तक, सीरिया और अन्य हिस्सों में हिंसा में फिर बढ़ोतरी हुई है। हथियार आसानी से उपलब्ध हैं और हमले बढ़ रहे हैं। हर स्थिति अलग है, लेकिन अस्थिरता और तनाव बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं, जिससे हर चीज अनियंत्रित और अनुमान लगाने से बाहर हो जाती है।
महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हर परिस्थिति भिन्न है, मगर ऐसी अस्थिरता बढ़ने के बारे में चिंता देखी जा रही है, जहां मामूली सी बात पर तनाव भड़क सकता है। उसके बाद तो हालात बहुत अनपेक्षित और नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं, जिनमें स्थिति को समझने में गलतियां होने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि हमें कार्बन की एक कीमत तय करनी होगी और जीवाश्म ईंधन पर अनुदान को भी बंद करना होगा। हम अब भी देख रहे हैं कि कोयले से चलने वाले बहुत से नए संयंत्र स्थापित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कोयले की लत अब भी खतरनाक तरीके से लगी हुई है। उन्होंने पत्रकारों को याद दिलाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस वर्ष कार्रवाई दशक की शुरुआत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि अगर निम्न व मध्यम आय वाले देशों में कैंसर की रोकथाम और उसके इलाज के लिए और ज्यादा उपाय नहीं किए गए, तो इन देशों में अगले 20 वर्षों के दौरान कैंसर के मामलों में 60% की बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के मौके पर 2 रिपोर्टें जारी हुई। इनमें से एक रिपोर्ट में कैंसर पर वैश्विक एजेंडा तय किया गया है और दूसरी रिपोर्ट में रिसर्च व रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों की कुल संख्या में से केवल 15% ही सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से कैंसर के इलाज की समुचित सेवाएं मुहैया कराते हैं, जबकि धनी देशों की कुल संख्या के लगभग 90% देश अपने यहाँ कैंसर के इलाज की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इन रिपोर्टों में बताया गया है कि अनेक कदम उठाकर कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जा सकती है। इनमें तंबाकू सेवन पर काबू पाना भी शामिल है, साथ ही लिवर कैंसर की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर अच्छी कामयाबी हासिल की जा सकती है। पिछले 5 दशकों के दौरान कैंसर रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, जिससे इस बीमारी के कारण होने वाली मौतें कम करने में मदद मिली है, लेकिन निम्न व मध्य आय वाले देशों में केवल 5% की कमी दर्ज की गई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि कैंसर किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्युदंड नहीं होना चाहिए।
भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें गरीब व वंचित समूहों की बात सुनी गई। उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उनसे संबंधित आंकड़े एकत्र करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने का भी प्रयास किया गया। दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ में योजना निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञ केडी मैती से बातचीत की और जानना चाहा कि वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज VNR यानी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के तहत हो रहे विचार विमर्श का उद्देश्य क्या है।
सर, ये जो VNR कंसल्टेशंस हो रहे हैं, इनमें क्या प्रमुख मुद्दों पे बातचीत हो रही है और इनका मकसद क्या है?
SDG का जो मेन मुद्दा है, लीविंग नो वन बिहाइंड, इसका क्लियर ये मैंडेट है कि इट इज अबाउट ऑल पीपल। The development that the country has to take forward has to address every human being, chahe wo migrant population ho, chahe bachchon ka group ho, chahe wo refugee ho, chahe wo women ho, men ho. Hum aisa ek VNR report banana chahte hain, jiske andar wo jo log hain jo marginalized hai, jo vulnerable hai, jinki sunwai kam hoti hai, unke situation kya hai. Objective bada clear hai. VNR will not be about 80% of the population. VNR has to be for all people. तो वो जो 20% जो below poverty line है, जो कि marginalized है, जो poorest of poor है, उनकी आवाज भी हमें VNR में लाना है।
तो आप marginalized लोगों की बात करें, तो इन लोगों की भागीदारी आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? क्या CSOs के through या ये लोग खुद भी आकर अपनी परेशानियां बता रहे हैं?
कुछ हम लोगों ने कोशिश की कि different religious group से, बच्चों से, डिफरेंट ज्योग्राफी से। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग में हमने देखा पीपल फ्रॉम JNK से लेकर लक्षद्वीप तक लोग आए और सिविल सोसाइटी के जो काम वो करते हैं या लोगों की जो बातें वो जानते या समझते हैं उनकी वॉइसेस को वो लाए।
तो बच्चों को लेकर क्या प्रमुख चिंताएं, कंसल्टेशन से क्या कुछ निकल कर आया?
जो चैलेंजेस हैं कि बच्चे क्यों कुपोषित रह जाते हैं, बच्चे क्यों जो न्यूनेटल मोर्टैलिटी यानी कि डेथ विद इन 29 डेज क्यों होती है, ये सब बातें डिस्कस हुई। एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में ICDS एक बड़ा प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 1973 से ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर भी आज के तारीख में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 38% ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स आर स्टंटेड। तो क्यों हो रहा है, चैलेंजेस क्या है? हमारे जो आंगनबाड़ी सेंटर में जो बहनें काम करती हैं, क्या वो सर्विसेज देती नहीं है या देना नहीं चाहते हैं, या हमारे कोई सप्लाई सिस्टम में चैलेंजेस है या डिमांड सिस्टम के अंदर भी कोई चैलेंजेस है? तो ये सारे मुद्दे वहां डिस्कस हुए हैं। जो ग्राउंड लेवल एविडेंसेस हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडीज करते हैं, पर उन असेसमेंट पॉलिसी मेकर तक नहीं पहुंच रही है। तो एक सजेशन ये आया कि क्या हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारी सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक बनाया जाए। कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो लोएस्ट लेवल के पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है कि कितने बच्चे मेल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं या कितने वुमेन सफर करती हैं, बट ये आज भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो बच्चे जो कि एक माइग्रेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं या वो वुमेन जो आपने गांव छोड़कर शहर में आकर उन्होंने अपना काम शुरू किया है, जो कि शहर के छोटे छोटे शहर में रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, वो आज भी वो एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो एक ये भी बात खुलकर आई वहां पर डिस्कशन के अंदर, ये तय हुआ कि साहब जिस तरह से हमारे देश में सर्वे हो रहा है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। तो हम जब सर्वे करें ये जरूर देखें कि उसमें माइग्रेंट पॉपुलेशन का भी एक सैंपल हो, ताकि हम जानें कि माइग्रेंट पॉपुलेशन के बच्चे उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, महबूब खान को इजाजत दीजिए।